दक्षिणी क्षेत्र मध्य पाषाण काल के अनुसंधान की दृष्टि से दक्षिणी क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल को सम्मिलित किया गया है। इस सभी प्रांतों से मध्य पाषाणिक उपकरण मिले हैं। दक्षिणी क्षेत्र की मध्य पाषाणिक संस्कृति की प्रमुख विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में उपकरण निर्माण के लिए दुधिया रंग के क्वार्ज प्रस्तर का प्रधान रूपेण उपयोग किया गया है। दूसरी बात यह है कि मध्य पाषाणिक उपकरण में ज्यामिति तत्व या तो नहीं है अथवा यदि है तो उनकी संख्या नगण्य है। मध्य पाषाण काल के उपकरणों के अतिरिक्त अन्य पुरावशेषों का प्रायः अभाव है। पृष्ठ संख्या 285। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित नागार्जुनी कोंडा, कर्नूल जिले में गिद्दलूर तथा चित्तूर जिले में रेडीगुंटा प्रमुख मध्य पाषाणिक पुरास्थल हैं। इनके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के अन्य कई जिलों से भी मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। नागार्जुनी कोंडा के मध्य पाषाणिक उपकरणों का अध्ययन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से किया गया है। कर्नूल जिले में मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज एल ए कमियाडे ने किया था। इसके बाद एन आइजक ने कर्नूल जनपद में मध्य पाषाण काल के अज्यामितीय लघु पाषाण उपकरणों के संबंध में अनुसंधान किया था। दक्कन कॉलेज पुणे के एम एल के मूर्ति ने चित्तूर जिले में स्थित रेडीगुंटा नामक पुरास्थल पर मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के विषय में खोज किया था, जिनका विकास उच्च पुरापाषाण काल के ब्लेड उपकरणों से हुआ था। यहाँ पर उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण क्वार्जाइट प्रस्तर पर निर्मित थे, किंतु मध्य पाषाण काल के उपकरणों के निर्माण के लिए क्वार्ज का उपयोग किया गया था। प्रमुख उपकरणों में पॉइंट्स, कुंठित ब्लेड, त्रिभुज तथा स्क्रेपर आदि हैं। कर्नाटक के रायचूर, बेल्लारी, बेंगलुरु, चित्रदुर्ग, बेलगांव तथा गुलबर्गा आदि जिलों से मध्य पाषाण काल के अनेक पुरास्थल प्रतिवेदित हैं। रायचूर जिले में कृष्णा नदी की घाटी से क्वार्ज प्रस्तर पर बने हुए लघु पाषाण उपकरण मिले थे हैं। बेल्लारी जिले में स्थित संगन कल्लू नामक पुरास्थल बेल्लारी कस्बे से लगभग 5 किमी उत्तर पूर्व दिशा में बेल्लारी मोका मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर सन 1946 में बी सुब्बाराव ने उत्खनन कराया था। तत्पश्चात 1969 में एसडी सांकलिया ने उत्खनन कार्य संपन्न कराया। यहाँ के उत्खनन के फलस्वरूप मध्य पाषाणिक पुरावशेष मध्य पुरापाषाणिक जमाव के ऊपर तथा नवपाषाण काल के स्तरित जमाव के नीचे प्राप्त हुए। इस प्रकार मध्य पाषाण काल की मध्यवर्ती स्थिति के विषय में यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य उल्लेखनीय हैं। बेंगलुरु के पास जलहल्ली नामक स्थान के पास मध्य पाषाण काल के अनेक पुरास्थल स्थित हैं, जहाँ से क्वार्ज पर बने हुए उपकरण प्राप्त हैं। गुलबर्गा जिले में अवस्थित कृष्णा एवं भीमा नदियों के मध्यवर्ती शोरापुर दुआब का अन्वेषण दक्कन कॉलेज पुणे के पद्दैया ने किया है, जिसके फलस्वरूप मध्य पाषाण काल के 25 पुरास्थल प्रकाश में आए हैं। के पद्दैया ने 10,000 लघु पाषाण उपकरणों का विश्लेषण किया है। नवपाषाण काल के उपकरणों की तुलना में मध्य पाषाण काल के लघु पाषाण उपकरण पतले तथा कम चौड़े हैं। इनमें से अधिकांशतः चर्ट पर बने हुए हैं। प्रमुख उपकरणों में कुंठित पृष्ठ वाले ब्लेड, चांद्रिक, छिद्रक तथा ब्यूरिन आदि हैं। इस प्रकार शोरापुर दोआब की मध्य पाषाणिक संस्कृति अज्यामितीय है। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर चेन्नई के दक्षिण में तिरुनेलवेली जिले में वायुजनित निक्षेप से निर्मित बालू के टीले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में टेरी कहते हैं। इन बालुका स्तूपों पर मध्य पाषाण काल पृष्ठ संख्या 286 के अनेक पुरास्थल स्थित हैं, जिन्हें प्रायः टेरी पुरास्थल टेरी साइट्स कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के इन पुरास्थलों की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफुट को है। तत्पश्चात 1942 में ए अयप्पन ने अपना तत्पश्चात 1942 में ए अप्यपन ने इनका अध्ययन किया। सन 1949 में एफ ई जाइनर ने तिरु नेलवेली जाकर भूतात्विक दृष्टि से टेरी पुरास्थलों का अनुसंधान किया। एफी जाइनर तथा बी अल्चिन ने 11 टेरी पुरास्थलों की भूतात्विक पृष्ठभूमि एवं भूतात्विक अवशेषों के विषय में विस्तृत अध्ययन करके सन 1956 में एक निबंध के रूप में प्रकाशित किया। मेघनान पुरम, कट्टमपली, कुथनकुली, सवायार पुरम, कट्टलन कुलम, कुलत्तूर, पट्टन तरुवई, सुरंगुड़ी, नाजरेत, मनाडू तथा कयमोली नामक ये 11 पुरास्थल हैं जो अश्मीभूत बालुका स्तूपों स्टैंडन्स पर स्थित हैं। बालू के इन टीलों का जिस समय निर्माण हो रहा था उस समय समुद्र का जलस्तर आजकल की तुलना में 6 से 9 मीटर ऊंचा रहा होगा। मध्य पाषाणिक मानव ने इस रेतीले टीलों के जिस धरातल पर निवास किया उसे वायुजनित निक्षेप की प्रक्रिया से निर्मित माना जाता है। एफी जाइनर ने अपने भूतात्विक अनुसंधान के आधार पर टेरी मध्य पाषाण काल का समय 4000 ईसा पूर्व से पहले निर्धारित किया है। टेरी पुरापाषाण पर जो लघु पाषाण उपकरण मिले हैं उनमें से 50% क्वार्ज पर, शेष 50% हल्के भूरे रंग के चर्ट पर बने हुए हैं। मेघनान पुरम से ज्यामितीय उपकरण नहीं मिले हैं। इस आधार पर यहाँ के लघु पाषाण उपकरणों को सबसे प्राचीन माना गया है। अन्य पुरास्थलों पर ब्लेड, कुंठित पार्श्व वाले ब्लेड, चांद्रिक, बेधक, नतोदर, स्क्रेपर, फलक, छिद्रक, ब्यूरीन तथा 2 पुरास्थलों से चॉपिंग उपकरण मिले हैं। कुलत्तूर से चांद्रिक सबसे अधिक संख्या में मिले हैं। साथ ही साथ त्रिभुजाकार ज्यामितीय उपकरण भी यहां से प्राप्त हुए हैं। बेधकों, पॉइंट्स तथा कतिपय अन्य लघु पाषाण उपकरणों का निर्माण निपीट प्रविधि प्रेशर टेक्निक से किया गया है जो मध्य पाषाण काल के उपकरणों के निर्माण की दृष्टि से भारत में अनोखा है तथा अन्यत्र अप्राप्य है। मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश को रखा गया है जो मध्य पाषाण काल के अवशेषों की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सागर, दमोह, भोपाल, सीहोर, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, खंडवा, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, सीधी आदि जिलों में मध्य पाषाण काल के पुरास्थल खोज निकाले गए हैं। होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शिलाश्रय, रायसेन जिले में भीमबैठका तथा सीधी जिले में वाघोर द्वितीय, मेढ़ौली बाकी तथा घघरिया शिलाश्रय का उत्खनन किया गया है। रीवा, सतना, सीधी, सागर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर तथा मंदसौर आदि जिलों में अनेक चित्रित शिलाश्रय हैं। पृष्ठ संख्या 287। मध्य प्रदेश के जम्बू द्वीप तथा दोरोथी द्वीप शिलाश्रयों का उत्खनन जीआर हंटर ने कराया था जिसके फलस्वरूप जम्बू द्वीप से 3 मानव कंकाल, 2 बच्चों तथा 1 वयस्क पुरुष प्राप्त हुए थे। दोरोथू द्वीप शिलाश्रय से 1 मानव कंकाल मिला था। इनके साथ अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मात्र लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे। आदमगढ़ शिलाश्रय मध्य प्रदेश का मध्य क्षेत्र का दूसरा उत्खनित पुरास्थल होशंगाबाद जिले में स्थित है जिनका उत्खनन सन 1964 में आरवी जोशी तथा एसडी खरे ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से कराया था। यहाँ पर एसुलन संस्कृति से लेकर मध्य पाषाण काल तक का सतत अनुक्रम मिला है। ऊपर के 60 सेमी के जमाव से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी मध्य पाषाणिक स्तरों में आदि से अंत तक मिलते हैं। लघु पाषाण उपकरणों में समानांतर पार्श्व वाले ब्लेड, पॉइंट्स, त्रिभुज, स्क्रैपर, छिद्रक, ब्यूरीन आदि मिले हैं। आदमगढ़ के उत्खनन से प्राप्त पशुओं की हड्डियों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि ये लोग जंगली पशुओं के शिकार के साथ पशुपालन भी करने लगे थे। जंगली पशुओं में चीतल, सांभर, बारहसिंगा, खरगोश, शाही आदि प्रमुख है। छिपकली की भी हड्डियां मिली हैं। पालतू पशुओं में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता तथा सुअर उल्लेखनीय हैं। अभी तक खाद्यान्न के अवशेष नहीं मिले हैं। आदमगढ़ से रेडियो कार्बन 2 तिथियां प्राप्त हैं। TF 1,20,55,000 प्लस माइनस 130 ईसा पूर्व तथा 895 प्लस माइनस 105 ईसा पूर्व। इनमें से प्रथम तिथि सीपियों सेल्स के नमूने पर आधारित है, जो ऊपरी सतह से 15 से 21 सेमी की गहराई से एकत्र किए गए थे। सीप आदि के नमूनों को रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के लिए बहुत उपयुक्त नहीं माना जाता है। भीम बैठिका नामक पुरास्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज V.S. वाकड़कर द्वारा सन 1998 में की गई थी। यहाँ पर लगभग 500 शिलाश्रय एवं गुफाएं हैं, जिनमें से अधिकांश में मध्य पाषाण काल के लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं। सन 1972 में V.S. वाकड़कर ने यहाँ पर उत्खनन कराया। इसके पश्चात सन 1973 से सन 1976 तक यहाँ पर दक्कन कॉलेज पुणे तथा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की ओर से V.N. मिश्र तथा V.S. वाकड़कर ने उत्खनन कराया। यहाँ पर एसुलन संस्कृति के पुरापाषाण काल के उपकरणों से लेकर मध्य पाषाण काल तक के लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के एक शिलाश्रय में 8 स्तर मिले हैं, जिसमें से अंतिम 3 मध्य पाषाणिक है। पुरापाषाण काल में उपकरण क्वार्जाइट नामक प्रस्तर बने हुए मिलते हैं। मध्य पाषाण काल के प्रारंभिक चरण में संबंधित उपकरण और ज्यामितीय हैं। इनके साथ मृदभांड के टुकड़े नहीं मिले हैं। द्वितीय चरण में ज्यामितीय उपकरणों के साथ मृदभांड भी पृष्ठ संख्या 288 मिलने लगते हैं। प्रमुख उपकरण प्रकारों में कुंठित ब्लेड, त्रिभुज, चांद्रिक, समलंब, चतुर्भुज, स्क्रेपर आदि हैं। भीमबैठका के ऑडिटोरियम नामक शिलाश्रय के उत्खनन के परिणाम स्वरूप मध्य पाषाणिक स्तरों से मानव शवाधान के 2 उदाहरण मिले हैं। इनमें से एक वयस्क व्यक्ति का तथा दूसरा किसी बच्चे से संबंधित है। बच्चे के गले में गुरियों की एक माला थी तथा उसको दफनाते समय मांस अर्पित किया गया था, क्योंकि किसी पशु की एक पसली मिली है। मानव कंकालों की कतिपय हड्डियां ही मिली हैं, जो अत्यंत अस्त व्यस्त दशा में थी। भीमबेटका से 4 रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त हैं, जिसमें से एक तिथि मध्य पुरापाषाण काल के स्तर से है तथा शेष 3 मध्य पाषाण काल के स्तरों से है। PRL सात करोड़ 87,15,820 प्लस माइनस 580 13,870 ईसा पूर्व। PRL 5,36,980 प्लस माइनस 120 970 ईस्वी। PRL 53,42,860 प्लस माइनस 150 910 ईसा पूर्व। भीमबेटका की रेडियो कार्बन तिथियां जो कालक्रम इंगित करती हैं, वह अपेक्षाकृत बात का है, इसलिए इनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा के क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। बिहार प्रांत के रांची, संथाल, परगना, पलामू, भागलपुर, राजगिरी आदि जिलों से लघु पाषाण उपकरण अभी तक प्रतिवेदित हैं। रांची के कुचझरिया, संथाल, परगना के बुद्धूडीह, भेलाडीह, चौधरीडीह, चोरडीह, दौर, दुबरकुंड, दुमार, घोलाजुरी, घोलास, इंदपहारी, कमकर शोला, करनकोल, जोरखुटिया, मधुबन, टेपरा, पलामू जिले के मरबनिया, प्रतापपुर, भागलपुर जिले के अंबरपुर, धालतौर, हेंचुला, कुमरहट, लगबा, राजा पोखर नामक पुरास्थलों से अज्यामितीय तथा ज्यामितीय दोनों प्रकार के लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान, बांकुड़ा, वीरभूर, मेदिनीपुर, तथा पुरुलिया आदि जिलों में मध्य पाषाण काल के लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। वर्धमान जिले में स्थित बीरभानपुर, देचुरी, मलान दीघी तथा गोपालपुर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बीरभानपुर नामक मध्य पाषाण काल के पुरास्थल का उत्खनन हुआ है। यह पुरास्थल पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में दुर्गापुर के समीप दामोदर नदी के बाएं तट पर स्थित है। बीरभानपुर की खोज सन 1954 में बीपी लाल द्वारा की गई थी। सन 1954 में बीवी लाल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से यहाँ पर पृष्ठ संख्या 289 सीमित पैमाने पर उत्खनन कराया। तत्पश्चात सन 1957 में यहाँ पर बीबी लाल की ही देखरेख में अपेक्षाकृत विस्तृत पैमाने पर उत्खनन हुआ। रेखाचित्र 10 बीरभानपुर पुरातात्विक जमाव का अनुरेख बीबी लाल 1958 के सौजन्य से। बीरभानपुर का मध्य पाषाणिक पुरास्थल लगभग 1 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर उत्खनन के लिए 2 खंतियाँ डाली गई थी, जिन्हें बीरभानपुर 1 तथा बीरभानपुर 2 नाम दिए गए। मध्य पाषाण काल के जमाओं को 5 स्तरों लेयर्स में विभाजित किया गया है। ऊपरी सतह से लगभग 1 मीटर नीचे तक उपकरण मिलते हैं। बीरभानपुर के उत्खनन से बहुत अधिक संख्या में लघु पाषाण उपकरण नहीं मिले हैं। लगभग 68% उपकरण क्वार्जाइट नामक प्रस्तर पर बने हुए हैं, इसलिए बनावट की दृष्टि से ब्लेड बहुत सुंदर नहीं है। क्वार्ट्ज के अतिरिक्त चर्ट, चालसेडनी, बेसाल्ट, क्वार्जाइट, क्रिस्टल तथा अश्मीभूत कास्ट फॉसिल वुड का उपयोग उपकरणों के निर्माण के लिए किया गया है। प्रमुख लघु पाषाण उपकरणों में ब्लेड, चांद्रिक, बेधक, छिद्रक, ब्यूरीन, स्क्रेपर आदि हैं। एक समलंब चतुर्भुज बीरभानपुर में सतह सरफेस से मिला है, इसलिए बीरभानपुर के लघु पाषाण उपकरणों को प्रारंभिक चरण से संबंधित माना जा सकता है और ज्यामिति मृदभांड पूर्व अवस्था से इनको संबंधित किया जा सकता है। बीरभानपुर के उत्खनन से प्राप्त मध्य पाषाण काल के पूर्ण निर्मित उपकरणों शेप्ड टूल्स की वर्गीकृत तालिका अधोलिखित है। पृष्ठ संख्या 290 रेखाचित्र 11 बीरभानपुर लघु पाषाण उपकरण बीबी लाल 1998 के सौजन्य से। पृष्ठ संख्या 291 तालिका 10 बीरभानपुर के मध्य पाषाणिक उपकरण। उपकरण का नाम ब्लेड संख्या 106 प्रतिशत 37.5। उपकरण का नाम चांद्रिक संख्या 42 प्रतिशत 14.8। उपकरण का नाम बेधक संख्या 60 प्रतिशत 21.2। उपकरण का नाम छिद्रक संख्या 19 प्रतिशत 6.6। उपकरण का नाम ब्यूरीन संख्या 12 प्रतिशत 4.2। उपकरण का नाम स्क्रेपर संख्या 42 प्रतिशत 15.3। योग कुल संख्या 282 कुल प्रतिशत 99.6%। बीरभानपुर के मध्य पाषाण काल की संस्कृति के तिथि क्रम को निर्धारित करने के लिए कोई रेडियो कार्बन तिथि उपलब्ध नहीं है। यहाँ के उपकरण अज्यामितीय प्रकार के हैं। इनकी एक अन्य विशेषता यह है कि उन उपकरणों के साथ मिट्टी के बर्तन नहीं पाए गए हैं। दंतूर कटक ब्लेडों क्रिस्टेड रिच्ड ब्लेड्स का भी अभाव है। इन उपर्युक्त बातों के आधार पर बीबी लाल ने बीरभानपुर के लघु पाषाण उपकरण को कम से कम 4000 ईसा पूर्व पुराना बतलाया है। उड़ीसा में सुंदरगढ़ धेनकनाल पुरी क्योंझर तथा मयूरगंज जिलों के अनेक पुरास्थलों से मध्य पाषाण काल के लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। सुंदरगढ़ जिले के उल्लेखनीय पुरास्थलों में बालू डुंगरी बाड़गढ़ खुटागांव और कुरहडी प्रमुख हैं। क्योंझर जिले में पटना मयूरगंज में विसई राय रंगपुर बोडरा तथा कुचाई आदि प्रमुख पुरास्थल हैं। इनमें से मयूरगंज जिले में स्थित कुचाई का उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से बी के थापर ने 1961 से 1962 में कराया था। यहाँ के निचले स्तरों से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऊपरी स्तरों से नव पाषाण काल के उपकरण तथा भूरे रंग के हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। उत्तरी विंध्य क्षेत्र। उत्तरी विंध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग सम्मिलित है। चकिया जिले के चकिया क्षेत्र, सोनभद्र मिर्जापुर जिलों के क्षेत्र, इलाहाबाद जिलों की पृष्ठ संख्या 292, मेजा करछना तथा 12 तहसीलें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर जनपदों का समस्त क्षेत्र सम्मिलित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के द्वारा किए गए अनुसंधान के फलस्वरूप मध्य पाषाण काल के बहुसंख्यक पुरास्थल इस क्षेत्र से प्रकाश में आए हैं। इनमें से चकिया जिले में चंद्रप्रभा नदी की घाटी में स्थित बैरा, दोमुहमा, कपिसहा, सोनवर्षा, पंचपेडिया, राजा बाबा की पहाड़ी, भैसहवा, कुसुम्भार और कर्मनाशा नदी की घाटी में स्थित लतीफ शाह एवं कौड़िहार का उल्लेख किया जा सकता है। मिर्जापुर जिले में 50 से अधिक मध्य पाषाण के पुरास्थल ज्ञात हैं, जिनमें से मोरहना पहाड़, बगही खोर तथा लेखहिया का उत्खनन हुआ है। चोपनी मांडो, कुंडी डीह, लोना माटी, कपासी कला, भदौवा कला, मझगवा, मोहली आदि इलाहाबाद की मेजा तहसील के अंतर्गत बेलन नदी की घाटी में स्थित है। चित्रकूट जनपद में लालापुर, भौरी, एंचवारा, सिद्धपुर, पहरा आदि से लघु पाषाण उपकरण प्रतिवेदित हैं। महोबा, हमीरपुर, झांसी तथा ललितपुर जनपदों से भी मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। जालौन जिले से अभी तक मध्य पाषाण काल के उपकरण नहीं मिले हैं। उत्तरी विंध्य क्षेत्र में मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण चर्ट तथा चाल सेडनी पर मुख्यतः किया गया है। इनके अतिरिक्त कार्नेलियन, अगेट, जैस्पर, फ्लिंट, क्वार्ज तथा क्वार्जाइट का प्रयोग लघु पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए किया गया है। लघु पाषाण उपकरण नलिकाकार कोडों से बनाए गए हैं। प्रमुख उपकरणों में कुंठित तथा वक्र ब्लेड, छिद्रक, चांद्रित त्रिभुज एवं समलंब चतुर्भुज, वेधक आदि मिलते हैं। मोरहना पहाड़, बगही खोर तथा लेखहिया शिलाश्रय मिर्जापुर जिले में भैंसोर गांव से लगभग 5 किमी की दूरी पर मिर्जापुर से दक्षिण की ओर जाने वाली ग्रेट दक्कन रोड पर स्थित है। मोरहना पहाड़ की खोज ACL कार्लाइल ने 19वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम चरण में किया था। कार्लाइल ने यहां से बहुत अधिक संख्या में लघु पाषाण उपकरण एकत्र किए थे, किंतु उसने अपनी खोज का विवरण प्रकाशित नहीं किया था। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग की ओर से सन 1962-63 तथा 1963-64 के बीच में मोरहना पहाड़, बगही खोर और लेखहिया का उत्खनन कराया था। मोरहना पहाड़ के शिलाश्रय संख्या 4 के अंदर तथा शिलाश्रय संख्या 1 के बाहर स्थित खुले क्षेत्र में एक एक खंतियां आर.के. वर्मा द्वारा डाली गई। शिलाश्रय संख्या 4 के अंदर कुल 55 सेमी मोटा मध्य पाषाणिक जमा प्रकाश में आया, जिसे 4 स्तरों लेयर्स में विभाजित किया गया है। मोरहना शिलाश्रय संख्या 1 के बाहर जो खंती डाली गई थी उसमें 1.15 मीटर मोटा निक्षेप मिला है। पृष्ठ संख्या 293, जिसे 6 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। इनमें से 5 स्तरों से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। छठवां स्तर अवघटित आधारशिला का ही भाग है। इस स्तर से किसी प्रकार के कोई पुरावशेष नहीं मिले हैं। पांचवां स्तर बालू एवं बलुअर पत्थर के टुकड़ों से निर्मित है। इस स्तर से अज्यामिति लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रमुख उपकरणों में कुंठित ब्लेड, चांद्रिक, वेधक, स्क्रेपर आदि है। चौथे तथा तीसरे स्तरों से ज्यामितीय लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। द्वितीय तथा प्रथम स्तरों से हस्तनिर्मित मृदभांडों के टुकड़ों के साथ साथ लघुतर आकार के मध्य पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। बगही खोर शिलाश्रय मुरहना पहाड़ के पूर्व में लगभग 1 किमी की दूरी पर स्थित है। इसका उत्खनन आर के वर्मा ने कराया था। इस शिलाश्रय के उत्खनन के फलस्वरूप 55 सेमी मध्य पाषाणिक जमाव प्रकाश में आया है, जिसे 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। चित्र 12, बघई खोर शिलाश्रय, मुरहना पहाड़ के उत्खनन से प्राप्त परिणामों से मिलता जुलता लघु पाषाण उपकरणों का विकासात्मक क्रम बघई खोर के उत्खनन से भी ज्ञात होता है। नीचे से ऊपर की ओर बघई खोर के विभिन्न स्तरों का विवरण इस प्रकार है। सबसे निचला चतुर्थ स्तर प्रस्तर के छोटे छोटे टुकड़े, चिप्स, राख तथा राख मिश्रित मिट्टी से निर्मित, पृष्ठ संख्या 294, 8.75 सेमी मोटा जमाव है। चर्ट के ब्लेड पर बने लघु पाषाण उपकरण अल्प संख्या में मिले हैं। फलक पर बने हुए उपकरणों की संख्या अधिक है। ब्लेड, फलक, बेधक, चांदिक तथा क्रोट प्रमुख पुरावशेष हैं। मिट्टी के बर्तनों का अभाव है। तीसरा स्तर महीन बालू युक्त मिट्टी से निर्मित 7.50 सेमी मोटा पीले रंग का जमा है। इस स्तर में समानांतर पार्श्व वाले तथा कुंठित ब्लेड, चांद्रिक, बेधक और क्रोड आदि मध्य पाषाणिक पुरावशेष मिले हैं। इस स्तर से मृदभांड के टुकड़े नहीं मिले हैं। दूसरे स्तर से ज्यामितीय तथा अज्यामितीय लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रथम स्तर से जो लघु पाषाण उपकरण मिले हैं वे आकार में अपेक्षाकृत छोटे हैं। मिट्टी के बर्तनों के नमूनों की संख्या भी इस स्तर में बढ़ जाती है। सबसे ऊपरी प्रथम स्तर से लोहे के बने हुए 2 बाड़ तथा लोहे का एक टुकड़ा भी मिला है। बघई खोर के द्वितीय स्तर से एक विस्तीर्ण मानव समाधान मिला है, जिसके लिए तीसरे तथा चौथे स्तरों को काटते हुए एक कब्र का निर्माण किया गया था। कब्र में मानव कंकाल पश्चिम की ओर सिर तथा पूर्व दिशा की ओर पैर करके दफनाया हुआ मिला है। कंकाल पत्थर के छोटे टुकड़ों से ढका हुआ था। कंकाल के साथ लघु पाषाण उपकरण बहुत अधिक संख्या में मिले हैं। भारतीय नृतत्व सर्वेक्षण के RN गुप्त के अनुसार इस कंकाल की लंबाई 152.68 सेमी है। यह 20 से 21 वर्षीय युवती का कंकाल है। लेखिया अक्षांश 24 47 इंच 30 फुट उत्तर देशांतर 82 डिग्री 8 इंच 7 फुट पूर्व नामक पुरास्थल पर 5 शिलाश्रय हैं, जिनमें से 4 चित्रकारी से युक्त है। शिलाश्रय संख्या 1 तथा 2 का चयन उत्खनन के लिए किया गया था। जिया शर्मा के निर्देशन में बीडी मिश्र ने लेखिया का उत्खनन कराया था। शिलाश्रय संख्या 1 में 6.20 × 3.10 मीटर आकार की एक खंती डाली गई थी, जिसमें 48 सेमी मोटा मध्य पाषाणिक जमाव प्राप्त हुआ, जिसे 4 स्तरों में विभाजित किया गया। लेखिया शिलाश्रय संख्या 2 के बाहर स्थित खुले हुए क्षेत्र में 7 × 3 मीटर आकार की 3 खंतियां डाली गई थी। उत्खनन के फलस्वरूप 1.10 मीटर मोटा जो जमाव मिला है, उसको 9 विभिन्न स्तरों में जमाव की संरचना तथा रंग के आधार पर विभाजित किया गया है। इनमें से ऊपरी 8 स्तरों से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अज्यामितीय तथा ज्यामितीय उपकरणों को नीचे से ऊपर को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1. अज्यामितीय मृदभांड रहित लघु पाषाण उपकरण, नॉन जियोमेट्रिक प्री पोटेरी माइक्रोलिथ्स। 2. ज्यामितीय मृदभांड रहित लघु पाषाण उपकरण, जियोमेट्रिक टूल्स विदाउट पोटेरी, पृष्ठ संख्या 295। 3. ज्यामितीय मृदभांड सहित लघु पाषाण उपकरण, जियोमेट्रिक टूल्स विद पोटेरी। 4. लघुतर ज्यामितीय मृदभांड सहित लघु पाषाण उपकरण, डिमिनिटिव जियोमेट्रिक टूल्स विद पोटेरी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उत्तर विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों में एक विकासात्मक क्रम परिलक्षित होता है। उपकरण उत्तरोत्तर छोटे होते जाते हैं। प्रथम दो उपकरणों में मिट्टी के बर्तनों के उपयोग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कालांतर में उत्तरी विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति के लोगों के संपर्क के फलस्वरूप मध्यपाषाणिक लोगों ने हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। रेखाचित्र 13, लेखइयां, लघु पाषाण उपकरण, बीडी मिश्र 1977 के सौजन्य से। लेखइयां के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत हैं। स्तरीकरण एवं अतिव्याप्ति के आधार पर 17 में से 14 कंकालों को 8 उपकालों फेजेस में विभाजित किया गया है। अधिकांश 200 पृष्ठ संख्या 296 विस्तीर्ण समाधान एक्सटेंट बुरियल्स हैं। कंकाल सेकंड तथा 12th को छोड़कर से सभी का दिक् स्थापन ओरिएंटेशन पश्चिम पूर्व की को था। कहने का आशय यह है कि सिर पश्चिम की ओर तथा पैर पूर्व दिशा की ओर करके कब्र में चित लिटाया गया था। कंकाल संख्या द्वितीय का सिर दक्षिण की ओर तथा कंकाल संख्या 12वें का सिर उत्तर दिशा की ओर था। 17 में 13 कंकालों के लिंग की संभावित पहचान की जा सकी है। 10 को पुरुष तथा 3 को स्त्री बतलाया गया है। अधिकांश कंकाल वयस्क लोगों के हैं। एक कंकाल एक छोटे बच्चे का है। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखइयां में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पूर्णतः निर्मित तथा अर्धनिर्मित लघु पाषाण उपकरण बहुत बड़ी संख्या में कंकालों के साथ प्राप्त हुए हैं। कंकाल संख्या द्वितीय तथा फिफ्थ के सेकंड तथा फिफ्थ के साथ अंत्येष्टि सामग्री के भी प्रमाण मिले हैं। कंकाल सेकंड के साथ किसी पशु के जबड़े का बायां हिस्सा, हिरण के दो सींग तथा एक घोंघा रखा हुआ मिला है। कंकाल फिफ्थ के साथ भैंस की एक पसली मिली है। लेखइयां से 2 रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त हैं। टीएफ 41,73,660 प्लस माइनस 110 1710 प्लस माइनस 110 ईसा पूर्व तथा टीएफ 41,94,360 प्लस माइनस 115 2410 प्लस माइनस 115 ईसा पूर्व। दोनों तिथियां बिना जली हुई हड्डियों के नमूनों के आधार पर निकाली गई हैं। ये असंशोधित तिथियां हैं और 5730 के अर्ध जीवन पर आधारित हैं। सन 1955 में 2 अन्य रेडियो कार्बन तिथियां ज्ञात हुई हैं, जो क्रमशः 8370 प्लस माइनस 75 तथा 8000 प्लस माइनस 75 बीपी हैं। चोपनी मांडो नामक मध्य पाषाण काल से संबंधित पुरास्थल इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में इलाहाबाद नगर से दक्षिण पूर्व की दिशा में लगभग 77 किमी और देवघाट से पूर्व दिशा में लगभग 3 किमी की दूरी पर बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस पुरास्थल को सन 1967 में खोजने का श्रेय वीडी मिश्र को है, जिसने यहां सन 1967 में उत्खनन कराया था। तत्पश्चात सन 1978 से 79 से 1981-82 के बीच अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर जीआर शर्मा के निर्देशन में बीबी मिश्र ने चोपनी मांडो का उत्खनन कराया। चोपनी मांडो विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ एक मध्य पाषाणिक पुरास्थल है, जिसका क्षेत्रफल 15,000 वर्ग मीटर है। पूर्व में पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 150 मीटर है, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 100 मीटर है। इस पुरास्थल के संपूर्ण क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण, विभिन्न आकार के पत्थर के टुकड़े, घिसे हुए बटिकाश्म, पेबल आदि बिखरे पड़े हैं। सन 1978 से 1982 के बीच में जो उत्खनन हुए हैं, उनका उद्देश्य मध्य पाषाण के लोगों के रहन सहन के विषय में जानकारी प्राप्त करना था, इसलिए विस्तृत पैमाने पर क्षैतिज उत्खनन किया गया। उत्खनन के लिए 5x5 मीटर आकार, पृष्ठ संख्या 297, रेखाचित्र 14, चोपनी मांडो, पुरास्थल का विहंगम दृश्य, बीबी मिश्र 1980 के सौजन्य से, की 21 खंतियां डाली गई थी। भूतल से लगभग 30-35 सेमी की गहराई तक जाने के बाद अधिकांश खंतियों में उत्खनन रोक दिया गया। केवल 2 खंतियों में क्रमशः 60 सेमी और 80 सेमी की गहराई तक उत्खनन किया गया था। सन 1967 में अंशतः उत्खनित NH1 नामक खंती में आधारशिला तक उत्खनन किया गया। इस खंती में उत्खनन के फलस्वरूप 1.55 मीटर मोटा सांस्कृतिक जमाव प्रकाश में आया, जिसको 10 स्तरों लेयर्स में विभाजित किया गया है। चोपनी मांडो के उत्खनन के फलस्वरूप मध्य पाषाण काल के 3 सांस्कृतिक उपकालों फेजेस के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। इनमें से दूसरे उपकाल को मध्य पाषाणिक उपकरण सामग्री के आधार पर द्वितीय अ तथा द्वितीय ब में विभाजित किया गया है। चोपनी मांडो के विभिन्न उपकाल इस प्रकार हैं: 1 अनुपुरा पाषाण काल, 2 अ आरंभिक मध्य पाषाण काल, 2 ब प्रारंभिक मध्य पाषाण काल, 3 विकसित मध्य पाषाण काल अथवा आद्य नवपाषाण काल। पृष्ठ संख्या 298। अनुपुरा पाषाण काल नामक प्रथम उपकाल चोपनी मांडो के 20 सेमी मोटे 10वें अंतिम स्तर से संबंधित है। इस उपकाल के पाषाण उपकरण परवर्ती उपकालों के लघु पाषाण उपकरणों की तुलना में बड़े आकार के हैं, इसलिए इसको चित्र 15 चोपनी मांडो लघु पाषाण उपकरण बीबी मिश्र 1980 के सौजन्य से, पृष्ठ संख्या 299। उच्च पुरापाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल के बीच की संक्रमणात्मक अवस्था का द्योतक माना गया है। इस उपकाल के पाषाण उपकरणों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम वर्ग के उपकरणों की अपेक्षाकृत चौड़े एवं लंबे ब्लेड अधिक संख्या में हैं। प्रमुख उपकरणों में समानांतर पार्श्व वाले ब्लेड, कुंठित पार्श्व वाले ब्लेड, वेधक पॉइंट्स, खुरचनी, स्क्रेपर तथा ब्यूरिन आदि उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त बड़े आकार के क्रोड, फलक आदि हैं। द्वितीय वर्ग के उपकरण प्रथम वर्ग के उपकरणों से काफी मिलते जुलते हैं। इनमें प्रथम वर्ग के उपकरणों से अंतर यह है कि ये आकार में छोटे हैं तथा इसमें सुंदर पुनर्गण मिलता है। उपकरण चट पर बने हुए हैं। चित्र 16, चोपनी मांडो, प्रस्तर, गदाशीर्ष एवं हथौड़े, बीबी मिश्र 1980 के सौजन्य से, पृष्ठ संख्या 300। चोपनी मांडो के 9वें 20 सेमी तथा 8वें 15 सेमी स्तर आरंभिक मध्य पाषाण काल अ का द्योतन करते हैं। इसको मध्य पाषाण काल के अज्यामितीय लघु पाषाण उपकरण अवस्था से संबंधित किया जाता है, क्योंकि इन उपर्युक्त स्तरों से त्रिभुज तथा समलंब चतुर्भुज के आकार के पाषाण उपकरण नहीं मिले हैं। इस उपकाल के प्रमुख उपकरणों में समानांतर पार्श्व वाले ब्लेड, कुंठित ब्लेड, बेधक, खुरचनी आदि उल्लेखनीय हैं। इस उपकाल के अधिकांश उपकरण चट पर बने हुए हैं। इस उपकाल से संबंधित 3.80 मीटर व्यास की गोलाकार 2 झोपड़ियों के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। प्रारंभिक मध्य पाषाण काल व चोपनी मांडो के 7वें से लेकर 4थे स्तरों का संबंध इस उपकाल से है। इस उपकाल का जमाव कुल मिलाकर लगभग 40 सेमी मोटा है। इस उपकाल से ज्यामितीय लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तनों का इस उपकाल में अभाव है। पूर्ववर्ती उपकाल की तुलना में इस उपकाल के लघु पाषाण उपकरण छोटे हैं, नव निर्मित से लगते हैं और इनका निर्माण अत्यंत कुशलता के साथ किया गया है। प्रमुख उपकरणों में विभिन्न प्रकार के ब्लेडों के अतिरिक्त त्रिभुज, चतुर्भुज, दांतेदार ब्लेड आदि उल्लेखनीय हैं। उपकरणों का निर्माण चट पर चालचेटनी पर किया गया है। इस उपकाल से संबंधित गोलाकार 5 झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें से 3 झोपड़ियां 7वें स्तर से और 2 झोपड़ियां 6वें स्तर से संबंधित हैं। इन झोपड़ियों का व्यास लगभग 3 मीटर है। झोपड़ियों के फर्श पर बहुसंख्यक लघु पाषाण उपकरण तथा छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े बिखरे हुए मिले हैं। इनके अतिरिक्त पत्थर की निहाई, हथौड़े आदि के टूटे हुए टुकड़े मिले हैं। विकसित मध्य पाषाण काल अथवा आद्य नवपाषाण काल के नाम से चोपनी मांडो का तीसरा और अंतिम सांस्कृतिक उपकाल जाना जाता है। इस उपकाल से तीसरे से लेकर प्रथम स्तर तक संबंधित है। इस उपकाल से संबद्ध सांस्कृतिक जमाव लगभग 40 सेमी मोटा है। इस उपकाल से ज्यामिति लघु पाषाण उपकरणों के साथ साथ हस्तनिर्मित मृदभांड भी मिले हैं। प्रमुख उपकरणों में समानांतर तथा कुंठित पार्श्व वाले ब्लेड, बेधक, चांदिक, त्रिभुज, विषम बाहु, समलंब, चतुर्भुज, खुरचनी आदि उल्लेखनीय हैं। चट के अतिरिक्त चालसेटनी का अधिकाधिक उपयोग उपकरणों के निर्माण के लिए इस उपकाल में किया जाने लगा था। इस उपकाल से 13 झोपड़ियों की आधार योजना ग्राउंड प्लान्स के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है, जिनमें से 6 गोलाकार हैं, से 7 अंडाकार हैं। गोलाकार झोपड़ियों का औसत व्यास 3.50 मीटर मिलता है। अंडाकार झोपड़ियों की बड़ी भुजा की औसत माप 4.70 मीटर और छोटी भुजा की औसत माप 3.30 मीटर है। तीसरे उपकाल की झोपड़ियों के स्तंभ गर्तों के पृष्ठ संख्या 301 आधार पर यह कहा जा सकता है कि चोपनी मांडो के विकसित मध्य पाषाणिक संस्कृति के लोग बांस, बल्ली तथा घास फूस की झोपड़ियां बनाकर उनमें रहते थे। इन झोपड़ियों के फर्श से बिखरे हुए लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पत्थर की निहाई, हथौड़े, गदा शीर्ष, मुद्रिका पाषाण, गोफन पाषाण, स्लिंग बॉल्स, घर्षक पाषाण, सील लोढ़े आदि मिले हैं। घास फूस की छाप से युक्त जले हुए मिट्टी के टुकड़े, पशुओं की हड्डियां भी झोपड़ियों के फर्श से मिली हैं। चित्र 17 चोपनी मांडो हस्तनिर्मित मृदभांड बीबी मिश्र 1980 के सौजन्य से। तीसरे उपकाल से हस्तनिर्मित मृदभांड भी मिले हैं जो अत्यंत भंगुर हैं तथा बहुत अच्छी तरह से पके हुए नहीं हैं। बर्तनों की मिट्टी भली भांति गुथी हुई नहीं थी। उसमें बालू तथा कभी कभी धान की भूसी और पुआल के छोटे छोटे टुकड़े सालन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। छोटे छोटे कटोरे, बाउल्स तथा कलश बेसेस प्रमुख पात्र प्रकार हैं। बर्तनों के स्लिप चमकाने तथा रंगने के साक्ष्य मिलते हैं। लाल तथा धूसर दो रंगों के मृदभांड मिलते हैं। अनेक पात्र खंडों में ठप्पा लगाकर सतह पर डिजाइनें बनाई गई हैं। बर्तनों की बाहरी सतह पर फूल पत्ती तथा शंख की सी छाप मिलती है। पृष्ठ संख्या 302। चित्र 18 चोपनी मांडो धान के दानों का आवर्धित चित्र बीबी मिश्र 1980 के सौजन्य से। चोपनी मांडो से रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त नहीं है। पुरातात्विक आधार पर सापेक्ष विधि से कालानुक्रम निर्धारित किया गया है। पुरातात्विक आधार पर 17,000 से 7,000 ईसा पूर्व के बीच चोपनी मांडो के संपूर्ण सांस्कृतिक जमाव की तिथि आंकी गई है। चोपनी मांडो के उत्खनन से इस प्रकार उत्तरी विंध्य क्षेत्र के की मध्य पाषाणिक संस्कृति पर नया प्रकाश पड़ा है। मध्य गंगा घाटी। गंगा का विशाल चौरस मैदान हिमालय पर्वत तथा दक्षिण के पठारी भाग के बीच में स्थित है। यह मैदान यमुना, गंगा और उनकी अनेक सहायक नदियों गंगा का विशाल चौरस मैदान हिमालय पर्वत तथा दक्षिण के पठारी भाग के बीच में स्थित है। यह मैदान यमुना, गंगा और उनकी अनेक सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़क मिट्टी से निर्मित है। इस मैदान में जलोढ़क मिट्टी का बहुत पृष्ठ संख्या 303 मोटा जमाव है। भूतात्विक दृष्टि से गांगेय क्षेत्र की जलोढ़क मिट्टी को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक भांगर, दो खादर। भांगर अपेक्षाकृत पुराना जलोढ़क जमा है जिसका निर्माण प्रातिनूतन काल में हुआ। इसमें सोडियम तथा कैल्शियम अधिक मात्रा में मिलता है। बड़े बड़े कंकड़ इस जमाव में काफी मिलते हैं। जिस समय भांगर के ऊपरी स्तर का निर्माण हो रहा था, उसी समय मध्य गंगा घाटी में मध्य पाषाण काल के मानव का पदार्पण हुआ। उत्तरी विंध्य क्षेत्र में जलवायु के परिवर्तन तथा जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप मध्य पाषाणिक मानव को मध्य गंगा घाटी में आने के लिए बाध्य होना पड़ा होगा। खादर में वनस्पतियों के अंश का आधिक्य है तथा फास्फोरस आदि कार्बनिक तत्वों की न्यूनता है। मध्य पाषाण काल के अनुसंधान की दृष्टि से इस जमाव का कोई विशेष महत्व नहीं है। गंगा के मैदान को भौगोलिक बनावट की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया जाता है, एक ऊपरी गंगा घाटी, दो मध्य गंगा घाटी तथा तीन निचली गंगा घाटी। इनमें से केवल मध्य गंगा घाटी में ही मध्य पाषाण काल के लघु पाषाण उपकरणों के संबंध में अनुसंधान हुआ है। अन्य क्षेत्रों में भी अन्वेषण करने पर मध्य पाषाण काल के पुरावशेषों के मिलने की संभावना है। मध्य गंगा घाटी में गंगा गोमती के बीच में स्थित क्षेत्र में अनेक गोखुर झीलें विद्यमान हैं। इन झीलों का निर्माण गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप परित्यक्त सर्पिल मोड़ों में हुआ है। अनेक झीलें कालांतर में निक्षेपण के फलस्वरूप पूरित हो गई हैं, लेकिन कतिपय आज भी विद्यमान हैं। मध्य गंगा घाटी की इन्हीं झीलों के तटों अथवा उनके समीपवर्ती स्थानों को मध्य पाषाण काल के मानव ने अपने प्रवास स्थलों कैंप साइट्स के रूप में चुना था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने मध्य गंगा घाटी में सन 1971-72 ईस्वी से लेकर 1987-88 के बीच में जो अन्वेषण एवं उत्खनन किए हैं उनसे मध्य गंगा घाटी के मध्य पाषाण काल के विषय में प्रकाश पड़ा है। अन्वेषण से फलस्वरूप मध्य पाषाण काल के 198 पुरास्थलों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है, जिनको उपकरणों के आकार प्रकार तथा निर्माण की तकनीक में भिन्नता के आधार पर तीन उपकालों में विभाजित किया गया है, एक अनुपुरा पाषाण काल, दो आरंभिक मध्य पाषाण काल, तीन परवर्ती मध्य पाषाण काल। पृष्ठ संख्या 304। अनुपुरा पाषाण काल के अभी तक 5 पुरास्थल ज्ञात हैं। इन पुरास्थलों में से अहिरी इलाहाबाद जिले में, गढ़वा भदोही जिले में, मंदाह सालीपुर तथा सुलेमान पर्वतपुर प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अनुपुरा पाषाण काल के उपकरण अपेक्षाकृत बड़े एवं मोटे आकार के हैं। इनमें से समानांतर तथा कुंठित पार्श्व वाले ब्लेड, बेधक पॉइंट्स, चांद्रिक खुरचुनी, स्क्रेपर, छिद्रक तथा ब्यूरिन आदि प्रमुख उपकरण हैं। इन उपकरणों का निर्माण मुख्यतः चर्ट पर हुआ है। प्रथम वर्ग के इन उपकरणों को उच्च पुरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल के मध्यवर्ती संक्रमण काल में रखा गया है, इसलिए इन उपकरणों को अनुपुरा पाषाण काल के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आरंभिक मध्य पाषाण काल के अभी तक 172 पुरास्थल ज्ञात हैं। इस वर्ग के पुरास्थलों से अज्यामितीय लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। समानांतर एवं कुंठित पार्श्व वाले ब्लेड, बेधक, खुरचनी, चांद्रिक आदि प्रमुख लघु पाषाण उपकरण हैं, जिनका निर्माण चर्ट, वालसेडनी, अगेट तथा कार्नेलियन आदि पर किया गया है। द्वितीय वर्ग के उपकरण प्रथम वर्ग के उपकरणों की तुलना में छोटे हैं। तृतीय वर्ग में परवर्ती मध्य पाषाण काल को रखा गया है। इस वर्ग के 21 पुरास्थल ज्ञात हैं। प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय, नाहर राय, महदहा, दमदमा, बारीकला, इलाहाबाद जिले में स्थित बीछिया और जौनपुर जिले में लोहिना, नगोली तथा पूरा गंभीर शाह आदि परवर्ती मध्य पाषाण काल के प्रमुख पुरास्थल हैं। अन्य लघु पाषाणिक उपकरणों के अतिरिक्त त्रिभुज एवं समलंब, चतुर्भुज आदि ज्यामितीय उपकरण मिले हैं, जिनके निर्माण में चर्ट, चालसेडनी, अगेट, कार्नेलियन, जैस्पर आदि का प्रयोग किया गया है। पत्थर के लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियों तथा सिंगों के उपकरण तथा आभूषण भी सराय, नाहर राय, महदहा तथा दमदमा नामक इन तीन उत्खनित पुरास्थलों से मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों के अवशेष किसी भी पुरास्थल से नहीं मिले हैं। सराय नाहर राय महदहा तथा दमदमा के उत्खनन से मानव कंकाल मिले हैं। उत्खनित पुरास्थलों से पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है, जिनके उत्खनन के परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी के मध्य पाषाण काल के विषय में उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त हुई है। लघु पाषाण उपकरण पशुओं के सिंह के बने हुए उपकरण एवं आभूषण, वन्य पशुओं की हड्डियां और मानव कंकाल उपर्युक्त इन तीनों पुरास्थलों से मिले हैं। मध्य गंगा घाटी में मध्य पाषाण काल की खोज का इस प्रकार अनेक दृष्टियों से महत्व है।